14 नवंबर 2011 षटकारक लेक्चर नंबर एक है आज अभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियां, नमो वच्छायां, नमो लोए सौवसाऊणं। जम्जस्य जम्मिदेशे जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदिदौ वाणि सौपजाये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकदिशोहु कुदिति। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की ये जो गाथाएं हैं उसमें तो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय की जो पर्याय है वो कहाँ होगी, यानी उसका स्थान कौन सा है, किस क्षेत्र में होगी, किस द्रव्य में होगी, किस काल में होगी, किस विधि से होगी, सब कुछ निश्चित है ये बात बताते हैं। परंतु ऐसे कोई कहने से हम मान ले ऐसे थोड़ी है, तो कहते उसकी जो कुछ कारण मीमांसा है, उसकी जो कुछ रीजनिंग है वो हमें पता हो तो ये बात हम स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे वस्तु में जो कारण कार्य व्यवस्था है उसके बहुत सारे सिद्धांत है, उसमें से हम यहाँ षटकारक का विषय अपना चल रहा है। हमने देखा था ये षटकारक कौन कौन से है मुकुंद भाई?
कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारण, अपादान कारण, अधिकरण कारक।
हाँ, कारक कहना कारक। हाँ, कर्ता है जो स्वतंत्रता से अपने कार्य को करता है। कौन स्वतंत्रता से अपने कार्य करता है? तो द्रव्य अपने पर्याय का करता है, पर्याय को ही यहाँ कार्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं के पर्याय का करता है, अन्य कोई आकर इसका परिणमन करा दे ऐसी बात तीन काल में नहीं होती। कहते वो स्वतंत्रता से अपने कार्य को करता है। अब हम 102 पेज पर आ गए हैं कि हमारी तो शुद्ध पर्याय तो स्वतंत्रता से होती ही होती है, ये जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो तो कर्म कराता है कि नहीं? हमने तो ऐसा ही मान रखा है, हम तो भोले हैं, बिचारे हैं। ये कर्म का उदय आता है ना तो हम वो हमें राग द्वेष कराता है। अब यहाँ ये इसी के बारे में यहाँ चर्चा चलेगी। अज्ञानी जीव राग द्वेष की उत्पत्ति पर पदार्थों के कारण या कर्मों के कारण होती है मानता है। तो मैं तो वैसे बहुत सीधा आदमी हूँ, परंतु पड़ोसी बहुत तकलीफ देता है या बच्चे शोर मचाते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सामने वाला कोई ऐसी मायाचारी करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसे हम कहते भी है। यानी किसके कारण आया गुस्सा? सामने वाले के कारण। अब उसको कहते नहीं नहीं वो तो उसका कारण नहीं, नहीं क्या करे, कर्मों का उदय है इसलिए गुस्सा आया। क्योंकि शास्त्र में सुना है जहाँ जहाँ यहाँ क्रोध चल रहा है जीव के परिणामों में वहाँ क्रोध का कर्म का उदय चल ही रहा है। परंतु ये मानता क्या है? वो कर्म के उदय के कारण पराधीन होकर मैंने गुस्सा किया। अरे उसकी सत्ता में तो क्रोध मान माया लोग सभी के परमाणु पड़े हैं। ये क्रोध करेगा तो क्रोध का उदय होगा, मान करेगा तो मान का उदय होगा, दोनों साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि वो हुआ इसलिए इसको करना पड़ा, ऐसा नहीं है। तो अज्ञानी मानता है ऐसा। सच्चा कारण तो उस जीव का अज्ञान भाव ही है। अज्ञान ने उसको ये कारण कार्य संबंधी जो वस्तु व्यवस्था है उस संबंधी वो जानता नहीं है, अपनी कल्पना से कुछ मान के बैठता है। समय सार नाटक में लिखा है। ये नाम कभी सुना है समय सार नाटक? किसने? बनारसीदास जी ने समय सार ग्रंथ के ऊपर ये और आत्मख्याति टीका जो है अमृत चंद्राचार्य ने लिखी हुई है। पेज नंबर 102 है। 102 नंबर पानों पर है। समय सार नाटक में लिखा है, अभी नाटक समय सार ग्रंथ है उसमें अभी एक कोटिंग करे कि शिष्य पूछता है, यानी बनारसी दास जी ने काव्य में लिखा है कि शिष्य अपने गुरु से पूछता है, हे स्वामी राग द्वेष परिणामों का मूल प्रेरक कौन है, उसको करने वाला मूल क्या कारण है वह आप मुझे बताइए। पुद्गल कर्म है या मन वचन काय की क्रिया है या इंद्रियों का भोग है या धन है या घर है? क्या क्या पूछा? कि पुद्गल कर्म के कारण ये हो रहे है कि मन वचन काय की क्रिया के कारण ये मुझे राग द्वेष हो रहे है कि इंद्रियों के भोग भोगने से मुझे ये राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है या धन के कारण मुझे ये लोभ होता है, सामने धन दिखता है तो मुझे लोभ उत्पन्न होता है ना, तो धन के कारण होता होगा या घर है, घर अभी बाकी सब इसकी लिस्ट बढ़ा देना, बच्चे है अन्य चीजें है। गुरु समाधान करते हैं कि छहो द्रव्य स्वयं अपने स्वयं के स्वरूप में, स्वरूप अपने रूप में सदा असहाय, असहाय ने गरीब बिचारे नहीं, असहाय ने दूसरे की सहायता बिना स्वयं स्व सहाय वाले, इसको असहाय कहते हैं, परिणमन करते हैं। इसने तो पूछा था कि राग द्वेष क्यों होता है, गुरु उत्तर क्या दे रहे हैं कि छो द्रव्य स्वयं अपने स्वयं के स्वरूप में सदा असहाय यानी दूसरे के किसी मदद असर बिना परिणमन करते हैं, इसलिए कोई भी द्रव्य अन्य किसी भी द्रव्य के परिणमन के लिए कभी प्रेरक नहीं होता, वो उसका करने वाला नहीं है। प्रश्न तो राग द्वेष के बारे में पूछा था, तो राग द्वेष भी जीव का अपना विभाव परिणमन है, वह भी दूसरे के कारण नहीं हो रहा ये बता रहे। और केवल राग द्वेष की बात नहीं है, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय उसका जो परिणमन है वो स्वयं अपने कारण होता है, पर के कारण नहीं होता। इसलिए राग द्वेष का मूल कारण मिथ्यात्व रूपी मदिरा पान ही है। मिथ्यात्व के कारण क्या हो रहा है इसका, जैसे मद्यपी मदिरा पीता है, नशा चढ़ती है तो उसको कुछ विवेक नहीं रहता, ऐसे मिथ्यात्व रूपी, कैसा है मिथ्यात्व, शरीर मैं हूँ और ये पद पदार्थ के कारण मेरा कार्य होता है, मुझे गुस्सा आता है आदि, ये जो मिथ्या मान्यता है, उल्टा अभिप्राय है, उसके कारण क्या होता है उसको पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट लगते हैं, ये भ्रांति है उसकी। मिथ्यात्व यानी क्या है, उल्टी मान्यता, किस संबंधी, वस्तु स्वरूप के संबंधी। चल बात है, ये पेन को मैंने पेंसिल मान लिया या मैंने इसको चौक मान लिया तो ये उल्टी मान्यता नहीं कहेंगे। जीव अजीव आश्रय बंध आदि जो सात तत्व है उस संबंधी जो उल्टी मान्यता है, अपने स्वरूप के बारे में जो उल्टी मान्यता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के बारे में जो उल्टी मान्यता है, उसको हम मिथ्या तो कहेंगे। तो उसके कारण इसको क्या हो रहा है, हम तो स्वयं जीव द्रव्य है और उसने माना क्या, ये जो दिख रहा है ये शरीर ढांचा यही मैं हूँ, फिर इसके लिए जो अनुकूल पंखा, हाँ ये पंखा अच्छा है, तो उसके प्रति राग हुआ है ना, और तो गैस के पास खड़े रहते तो तकलीफ होती है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। यह अनादिकालीन मिथ्या को दूर करने के लिए, क्या कहा, कब से ये अनादिकालीन है, ये किसी ने सिखाया नहीं है, इसको कहते हैं अग्रहित मिथ्या। ग्रहित यानी अग्रहित तो है ही है, ऊपर दूसरों के उपदेश होते हैं ना, इसे ये तू ही शरीर है तो ये ऐसा कर वैसा कर, ये जो पट्टी पढ़ाने वाले ऐसे तो उपदेश देने वाले हमें तो घर घर में मिलते हैं, इसके लिए कोई कुगुरु ढूंढने को नहीं जाना पड़ता। माँ अपने बेटे को पढ़ाती है ना, ये नाक किधर है, तेरे आंख किधर है, आईने में दिखा दिखा कर ये तू है, सिखा रहे ना हम अपने बच्चों को, कभी ऐसा सिखाते है कि तू तो जीव है, इस शरीर से तू जुदा है। तो कहते ये अनादिकालीन मिथ्यात्व दूर करने के लिए ही हम जिनेन्द्र कथित आगम का अभ्यास करते हैं। केवल अभ्यास करने से मिथ्यात्व तो दूर नहीं होगा। अभी तो हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, अभी हम षट कारक पढ़ रहे हैं, हमने पहले निमित्त उपादान भी पढ़ा, तो उस पर हम स्वयं विचार करें कि क्या ये सच है कि नहीं है। मैं तो अभी तक ऐसा मानता था और यहाँ तो कुछ अलग बात लिखी है, तो उस तत्वों का विचार करेगा, बारंबार विचार करेगा। कब तक? जब तक जैसा बताया है वैसा अपने को अंदर से महसूस नहीं होगा तब तक। स्कूल में जब हम गणित सीखते थे तो हमारे टीचर हमको कुछ क्वेश्चंस बताते थे घर से कि गणित सॉल्व करके लाओ, तो हम गणित करते थे, फिर क्या देखते थे उत्तर क्या हमारा सही आया कि नहीं, क्या देखते थे पुस्तक के पीछे, हाँ उसके उत्तर लिखे होते। और यदि टैली नहीं होता तो क्या करते थे, क्यों नहीं मिल रहा, आप क्या करते थे, हाँ फिर दोबारा ठीक, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। कब तक? जब तक, हाँ सुना, इजिएस्ट वे था ना, जैसे अपना आंसर है वहाँ राइट कर दो ना तो वो नहीं चले, जैसा सही वहाँ
क्या
जैसा सही है वैसा हमारा नहीं आता, तो हम स्वयं ट्राई करते हैं, अपने क्लास में इसको पूछेंगे कि मेरा ही उत्तर बराबर नहीं है, तेरा क्या आया है, फिर भी नहीं जम रहा है तो हम टीचर को पूछेंगे। ऐसे ही जैसे ये जिनागम ने तत्व बताया है, हम स्वयं पढ़ेंगे, बार बार उसका विचार करेंगे, परंतु हमें अलग ही कुछ लगता है, ये सही नहीं लगता है, तो फिर दोबारा हम उस पर विचार करेंगे, गहराई से एक एक तत्व का अभ्यास करेंगे। नहीं बराबर तो हम साधर्मी के साथ चर्चा करेंगे, और भी नहीं तो कोई ज्ञानी दूसरे आते हैं तो उनके साथ हम विनय पूर्वक उनको प्रश्न है समझने के लिए, वो कितने पानी में उसके लिए नहीं, ऐसे सभा में मिलते लोग हमको, जानबूझकर प्रश्न पूछना, क्योंकि पूरे सभा में प्रश्न पूछेंगे तो लोगों को लगे ना ये विशेष जानकार कोई लगता है, फिर वो वक्ता कितना जानता है मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ, तो ये अभिप्राय जो प्रश्न पूछने के, देखो प्रश्न पूछना भी स्वाध्याय का अंग है, परंतु कैसे प्रश्न पूछना है, समझने के लिए पूछना है कि हमें ये ऐसा लगता है और यहाँ ऐसी बात लिखी है तो ये कुछ हमारी समझ में नहीं आई, कहीं तो छोटी सी भूल होती है परंतु वो अपने अटक जाते हैं वहाँ पर, वहाँ से आगे गाड़ी नहीं बढ़ती है, तो फिर पूछ लेना, ऐसे पूछना भी स्वाध्याय है। तो ऐसे ये स्वाध्याय से क्या करना है, तो तत्व के निर्णय तक पहुँचना है, तत्व का विचार करेंगे, जैसा सही वस्तु स्वरूप है वैसा हम सोचेंगे, वैसा विचार करेंगे। अभी केवल वो पढ़ने से अभी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, जब इन तत्वों का ग्रहण होगा और आत्मा की अचिंत्य ऐसी महिमा जागृत होगी, क्योंकि वो आत्मा के संबंध में भी हम ये सारा पढ़ते ही हैं। इसे केवल ज्ञान का स्वरूप जब सही भाषित होगा तो हमारा स्वभाव भी ये केवल ज्ञान का है, तब ये बाकी सब विचार छूट कर अपनी आत्मा पर हम अपना ही उपयोग केंद्रित करेंगे तो आत्मा की अनुभूति होगी। परंतु जब तक ये तत्व निर्णय में कहीं भी कचास है, भूल है, मिथ्या मान्यता चलती है, ऐसी मिथ्या मान्यता के साथ आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए बेसिक पहली कंडीशन क्या है, जिनेन्द्र कथित आगम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वो तो मोक्ष का मार्ग बताने वाले तो इस विश्व में तो अभी बहुत बहुत हो गए ना। हम आपको मोक्ष दिला देते हैं, हम आपको सम्य दर्शन भी दिला देंगे, ऐसे बताने वाले मिलते हैं। तो कहते जिनेन्द्र कथित आगम का अभ्यास करते हैं, निमित्त उपादान, अभी इसमें से बहुत सारी यहाँ इस पुस्तक में कवर हुए हैं, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, ये तो कथन पद्धति है, पांच समवाय, ये भी आगे चलकर इसमें चैप्टर है पांच समवाय का, जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ वहाँ ये कारण रूप पांच कारणों का ग्रुप वहाँ विद्यमान होता ही होता है। नाम याद है पांच समवाय के, क्या सुने हैं कभी? हाँ बोलो शीला बेन, बोलो
उपादान,
देखो बहुत अच्छा, सबसे पहले स्वभाव कि जो अपने पर्याय रूप से परिणमित होने का स्वभाव, उस पर्याय कौन से द्रव्य में होगी, सम्य दर्शन नाम की पर्याय पुद्गल में होगी कि धर्म अधर्म में होगी, जीव द्रव्य में, तो स्वभाव। दूसरा है पुरुषार्थ, यानी जो परिणमन होता है वो द्रव्य के अपने पुरुषार्थ से होता है, उसमें द्रव्य का अपना बल लगता है, कोई पर द्रव्य आकर उस रूप परिणमा नहीं सकता। तीसरा है, तीसरा चौथा ऐसा कुछ नहीं, सभी पांचों एक तो समय में है, हम क्रम से बताने के लिए क्रम लगा रहे हैं। एक है काल लब्धि, काल लब्धि यानी विशिष्ट समय पर उस द्रव्य का परिणमन उस रूप होगा, ये उसकी काल लब्धि है। होनहार यानी उसी समय वही पर्याय होगी, अन्य कोई नहीं होगी, यानी समय भी निश्चित है पर्याय भी निश्चित है, उसको होनहार या भवितव्य कहेंगे। ये चारों ही उपादान में आते हैं, और ये पांचवा जो कारण है वह है निमित्त, यानी ये एक जो पर्टिकुलर जो कोई पर्याय है उसमें ये पांचों ही बराबर डेफिनेट है, यानी वही पर्याय होगी उसी समय होगी, इतना ही नहीं निमित्त भी उस समय वाला निमित्त भी निश्चित है। हम तो पहले निमित्त अपना नक्की करके बैठते हैं ना कि समय व्यसन चाहिए, क्या करेंगे, मनुष्य होकर वहाँ महाविदेह में जन्म लेंगे, तो इस मनुष्य भाव का क्या होगा, जो कार्य अभी यहाँ कर सकते हैं, तो विभिन्न ने अभी तो हम मिथ्या से रहना चाहते हैं और फिर महाविदेह में उत्पन्न हो गए। अब हम भूगोल सीख रहे हैं ना, वहाँ देखेंगे महाविदेह में भी एक एक आर्यखंड और पांच पांच मिलेंज खंड होते हैं, वहाँ जाके मिलेंज खंड में उत्पन्न होगा तो शिवशंकर का समागम नहीं मिलने वाला। पता ही नहीं ना हमें, इसे एक दूसरे की सुनकर कुछ भी बातें कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखते देखो, ये निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है मूलभूत अपने। वैसे तो हम पहले तो हमने छह द्रव्य सात तत्व आदि तो कवर किए थे, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, और भी ये जो आगे के सिद्धांत कौन से उसकी बात यहाँ देख रहे हैं। पांच समवाय, चार अभाव, क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय किसी पर्याय का नाम नहीं है, वस्तु की परिणमन व्यवस्था का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। और ये सिद्ध होने के लिए भी ये सारे षटकारक है, ये जो पांच समवाय है, ये सारे जो है यह सर्वज्ञ का स्वरूप है, ये इसको हम देखते आगे बढ़ेंगे तो ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि अपने आप हो जाएगी, क्योंकि इन बेसिक जो सिद्धांत है उसी के ऊपर आधारित वो बात है। सर्वज्ञता आदि विषयों का अध्ययन करके ठीक तरह से समझकर ये उपाय बता रहे अनादिकालीन मिथ्या तो दूर होने का, जिनेन्द्र कथित तत्वों का अभ्यास करना है, उसमें ये सारे सिद्धांत हमें सही रूप से समझना चाहिए, तदनुसार तत्व निर्णय करना मिथ्यात्व ग्रंथि का भेद करने के लिए अति आवश्यक है। मिथ्यात्व रूपी जो गांठ है ग्रंथि है उसका भेद करना है, मिथ्यात्व को छोड़कर सम्य दर्शन प्राप्त करना है, उसके लिए क्या आवश्यक है, जिनेन्द्र कथित आगम का अभ्यास, उसमें ये जो हमने देखे यहाँ पर ये सारे सिद्धांतों का सही स्वरूप समझना चाहिए और अपनी बुद्धि से उस निर्णय तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज तो कोई बताने आया है तो उसकी बात सच लगती है, कल दूसरा कुछ और चीजें बताएगा तो वो भी सच लगने लगती है, ये उसका निर्णय नहीं कहलाएगा कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है अन्यथा नहीं है बिल्कुल, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए परंतु यही वस्तु का स्वरूप है। जब तक ऐसा बिल्कुल निर्णय नहीं होता है तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो कहते हैं तत्व निर्णय करना यही मिथ्यात्व ग्रंथि का भेद करने के लिए अत्यावश्यक है। अज्ञानी अवस्था में यानी जब तक वो मिथ्या दृष्टि है उस अवस्था में जीव को राग का कर्ता कहो तो कहो, राग का कर्ता कहो तो कहो, क्योंकि वो अपने को राग रूप मान रहा है, राग से अपना स्वरूप उसने भिन्न नहीं पहचाना है, वैसे अज्ञानी भी ज्ञान ही करता है। पर राग का कर्ता कहो तो कहो क्यों कहा, कहो तो कहने, वो तो अज्ञानी को तो हम कह भी सकते राग का कर्ता है, परंतु ज्ञानी को तो हम कहेंगे वो तो राग का ज्ञाता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को तो अनंतानुबंधी राग वगैरह है सारे ही, ज्ञानी तो वो अनंतानुबंधी वाला नहीं है, वो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संवलन वाले है, यानी उसको राग का तो कर्ता है भी नहीं है, वो राग को अपने में उठता है जानता है पर अपने से भिन्न पहचानता है। क्योंकि उसके अपने ज्ञान में अनुभूति सतत चलती है। शुद्धोपयोग ने उसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, आत्मा को पहचान लिया है, परंतु मैं ज्ञान में हूँ ऐसी प्रतीति उसको सदैव चलती रहती है, उसको रटना नहीं पड़ता है। आप तो पिक्चर देखती है ना, हिंदी के नहीं देखती? हाँ, तो अमिताभ बच्चन जब कोई कुली का या कुछ भिखारी का कोई पाठ करता होगा तो उसको रटना पड़ता है, मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, मेरा इतना बड़ा बंगला है और मैं इतनी संपत्ति है, क्या वो उस पाठ में उस रोल में इतना इन्वॉल्व हो गया है, फिर भी उसकी जो प्रतीति वो क्या नकल जाती है क्या? उस समय भी वो तो बिल्कुल वो तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, उसकी उसमें कितना भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देता है फिर भी स्वयं कौन है इसकी प्रतीति तो हर समय चल रही उसकी। ऐसे ही ज्ञानी हो जाने पर आगे लिखा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के राग भावों का स्वामीपना नहीं होता। तो क्या होता है, ये जो उसका ज्ञानमय स्वरूप है उसी में उसको एकत्व है, उसी में उसको अहमपना है। ये राग में कोई अहमपना नहीं है, राग उठता है तो जैसे नाटक देखता है वैसे अपने में उठने वाले राग भावों को भी वो साक्षी भाव से देखता रहता है। ऐसा नहीं कि उसके क्रोध मान माया लोग नहीं होंगे, हाँ अनंतानुबंधी जैसे नहीं होंगे, परंतु अभी चौथे गुण स्थान वाला है तो तीन कषाय चौकड़ी उसकी विद्यमान है, तो उसको भी गृहस्थी है, तो क्या बच्चों पर वो डांटेगा नहीं? बच्चा अगर कुछ गलत काम करता है तो, या देवगुरु शास्त्र पर कोई संकट आता है तो क्या वो राजा होगा तो लड़ाई के लिए भी चला जाएगा युद्ध के लिए, कि अपने शास्त्रों का कोई या मंदिरों पर संकट आया है? पहले के जमाने में कितनी ऐसी बातें हुई है। तो क्रोध मान माया लोग उसके भी हो गए उसके भूमिका के अनुसार, परंतु तभी वो कैसे जान रहा है उसको, अपने से भिन्न, अपने में उठने वाले अपने से भिन्न, ये पॉसिबल है क्या अपने में उठने वाले अपने से भिन्न? शरीर में अभी तो मैं शरीर हूँ मान रहे ना, तो शरीर में कोई ट्यूमर आता है कोई रोग हो जाता है वो अपना मान के क्या? हाँ समय जाने दो, मिथ्या दृष्टि की बात कर रही मैं, हाँ ये अपना अंग मानते है क्या? अरे जाके उसको निकाल देते हैं, ट्यूमर का इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना ही तो रखो ना उसको, ये नहीं ये कुछ गलत है अपना, ये पार्ट एंड पार्सल नहीं है, इसको चलो दूर करो, ये तो वो भी अज्ञानी भी जान रहा है क्योंकि उसने शरीर में हूँ मान लिया है। अब ये ज्ञानी तो मैं ज्ञान में हूँ अनुभव भी चल रहा है उनका, तो उसमें जो राग द्वेष आदि जो विभाव भाव उत्पन्न होते हैं वो अपने में उसे जानते हैं, तो ये मेरा स्वरूप नहीं ये मेरे से भिन्न है, उससे जुदा ज्ञान में पने का अनुभव चल रहा है। अज्ञानी में क्या हो रहा है, ज्ञान और राग दोनों इतने एक में खो गए उसको मानता है, उसको अनुभव भी चल रहा है, अपने को राग में अनुभव चल रहा है उसका, अपने में ज्ञान हो रहा है उसका, तो जिसको कहते ना हो तो रहा है, ज्ञान से ही पूरी दुनिया को जानता है। शिलाबेन पेन दिख रहा है, दिख रहा है ना आत्मा है वो, समझ में आ रहा है?
ज्ञान में जाना तो आत्मा तो होगा ही ना?
होगा ही, क्या आपने कहा तो होगा ही, आचार्य कहते तो होगा ही, ज्ञान में जाना तो होगा ही, ये पेन है किसने जाना?
आत्मा,
आत्मा नहीं जाना।
हाँ तो आप हो कि नहीं?
हाँ
यानी ये मुकुंद भाई ने जाना कि नहीं आपने नहीं कहा? ये मैंने जाना, मैंने देखा ये पंखा घूम रहा है, मैंने देखा, अभी तो हवा नहीं थी अभी घूमने से हवा आई, मैंने जाना कि मैं हर बार तो मैं को जान रहा है वो। पर जब हम आत्मा की बात करें आत्मा ही नहीं मैं, आत्मा तो मैं हूँ इसका एहसास तो हर जीव को है, अज्ञानी को भी है, परंतु मैं कौन हूँ इसके बारे में भ्रमणा चल रही, मैं हूँ कि नहीं हूँ इसके बारे में किसी को शंका नहीं है, परंतु मैं हूँ तो कहाँ देखा, इधर देखा तो क्या दिखाई दिया, इंद्रियों के द्वारा तो ये देह दिखाई दिया, जहाँ मैं आत्मा हूँ वहीं पर ये देह भी है, और उसने आत्मा को इन्हें अपने को देखने की कोशिश किसके द्वारा की, तो इंद्रियों के द्वारा, तो क्या दिखाई दिया, देह जो उन्हीं प्रदेशों में है, तो यही मैं हूँ उसने मान लिया, ये आज की भूल नहीं अनादि की है। अभी देखा ना अनादि से ऐसा मिथ्या तो चल रहा है, जिस देह को धारण किया उस रूप में हूँ मानता है, यही भ्रमणा चलती है। तो यहाँ देखते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के राग भावों का स्वामीपना नहीं होता, अपने ज्ञातापना में उसे अहम बुद्धि होती है। ज्ञातापना में अहम बुद्धि नहीं, वो जानन 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 रूप जो मैं यहाँ कार्य हो रहा है वो मेरा कार्य है, वह मैं स्वयं हूँ, इसको कहेंगे ज्ञातापना में अहम बुद्धि। तथा आश्रव तत्व को, ये आश्रव तत्व क्या है? हाँ परिमल बेन, बराबर, बहुत अच्छा। क्योंकि अपने में जो क्रोध मान माया लोभ या शुभ या अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं वो तो पता चलता है कि नहीं अपने में, तो वो है आश्रव तत्व। मोह राग द्वेष के परिणाम है वो आश्रव तत्व है। अब यहाँ ज्ञानी की बात चल रही है, तो उसके जो कोई शुभ या अशुभ भाव हो रहे है, जो आश्रव तत्व है वह अपने से भिन्न जानता है। सात तत्वों का अपना यहाँ विषय चला था, तो जिस तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा भिन्न भिन्न पहचानता है। राग द्वेष अपने में ही उत्पन्न होते परंतु वो आश्रव तत्व है, और मैं स्वयं जीव तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, और ये अपने में ही उठने वाले राग द्वेष वो आश्रव तत्व है, मेरे से भिन्न तत्व है, ऐसे उनको अनुभव हो गया है, ऐसे वो जानते रहते हैं। यानी वो केवल बोलने को सीख गए वो नहीं है बात। अभी कोई कोई पूछते फिर कैसे बोलना, उन्होंने बोला केवल बोली भाषा मत सुधारो, अंदर से वैसी प्रतीति होनी चाहिए तब वो सच्चा कहेंगे, नहीं तो सांस पढ़ पढ़ कर तो बोलना तो बहुत सीख गए हम, है ना। इस कारण ज्ञानी को राग का कर्ता कहते। क्या कहा? ये देखो पर पदार्थ का तो ज्ञानी भी करता नहीं और अज्ञानी भी नहीं करता, परंतु अज्ञानी को राग भाव का कर्ता कहो तो कहो का है, यानी कह सकते हैं शास्त्र में भी उसको अज्ञानी को राग का कर्ता का है, क्योंकि वो अपने को मान रहा है, और ज्ञानी राग को अपने से भिन्न जानता है, वो राग का तो अकर्ता है मात्र ही जानता है, अपने में होने वाले राग को जानता है। राग को करता ऐसा नहीं कहा, हाँ क्योंकि राग तो उठेंगे जिस भूमिका में, चौथे वाला है या पांचवे वाला है छठे से गुणसार वाला है, उनके तो उस योग्य, उस भूमिका के योग्य वहाँ शुभ राग होगे, होगे कहा, वो करता ही नहीं कहेंगे। कहीं पर भी आप शास्त्र निकाल को देख लो, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो ऐसा करता है, वो उसका होते है, उसको उसको वो जानते हैं। और अज्ञानी क्या मानता है? मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता तो कैसे होते? देखो सुबह बाकी सब काम एक बाजू रखकर आपने दुकान को छोड़कर यहाँ बैठे कि नहीं बैठे स्वाध्याय करने के लिए, यानी ये शुभ भाव के हम करता है कि नहीं है, हम सोच समझ कर बैठे कि नहीं, तो यहाँ बैठे बैठे कभी विकल्प आता है कि नहीं, अच्छा रसोई करनी है, ये वो कुकर बंद किया कि नहीं किया, तो ये अशुभ क्यों आया? वो तो आता है, तो शुभ हम करते, ऐसा है ना। हम क्या मानते, शुभ भाव तो हम सोच समझ कर करते, पर क्या करे बैठे है पूजा के लिए, बीच में कुछ विकल्प आ जाता है ना, वो तो अशुभ तो आ जाता है और शुभ तो हम करते हैं, ये उसकी मिथ्या मान्यता है। शुभ भी आता है अशुभ भी आता है, परंतु अज्ञानी को उसमें इतना एकमेक वृत्ति हो गई है, बुद्धि हो गई है, कि वो उससे अपने स्वरूप भिन्न नहीं कर पाता है, भिन्न नहीं पहचान पाता। देखो पूरी दुनिया अन्य मत तो शरीर से भिन्न है की बात करनी, आत्मा जुदा है और शरीर जुदा है, आत्मा कभी मरता नहीं है, वो कभी जलता नहीं, वो सब सभी अन्य मति भी बात करेंगे, परंतु ये राग के भिन्नता की बात जिनागम के अलावा अन्य कहीं नहीं मिलेगी, और यही भेद ज्ञान बहुत आवश्यक है। क्योंकि देह से जुदा है, अभी देह पड़ा रहा, अभी अभी बोलता था, अभी उसमें से जो जानने वाला तत्व निकल गया, इतना तो अन्य मति बिना पढ़े लिखे भी जानेंगे कोई भी, उसके लिए कुछ आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि राग से जो भिन्नता की बात है वो अत्यंत, वैसे तो है तो सरल, परंतु ये सूक्ष्म बात पकड़ में नहीं आती जीवों को, और यही मूल रहस्य है। इतनी बात पकड़ो ना राग से भिन्नता की तो निहाल हो जाएगी, ऐसी बात है। देखो यहाँ अज्ञानी को उसके विभाव का कर्ता कहा है, परंतु परद्रव्य का कर्ता तो कोई भी नहीं हो सकता। क्या कहा? रोटी बनी, हमने क्या किया, उसका कर्ता कौन है?
रोटी, आटा।
आटा, बराबर। तो ये रोटी का कर्ता ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, परंतु अज्ञानी किसका करता है? फिर राग का विभाव कहने, क्या ये मैं रोटी बना रही हूँ या मैं बना सकती हूँ, ऐसी जो उसकी जो कुछ विभाव भाव चल रहे हैं उसका वो करता है। रोटी का कर्ता तो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, तो इसलिए कहा कि वो राग का कर्ता कहो तो कहो। ज्ञानी तो कहेंगे मुझ में ऐसे विकल्प आ रहे हैं रोटी बनाने के, उसको विकल्प को वो जान रहा है। और अज्ञानी क्या मानता है? मैं रोटी बना, वो मानता तो है मैं रोटी बनाता, पर वो भी रोटी नहीं बना सकता। उसको किसका कर्ता कहा? वो जो बनाने के उसमें भाव उत्पन्न हो गए उस भाव का कर्ता कहा उसको। देखो फिर पढ़ेंगे इसको। अज्ञानी को उसके विभाव का कर्ता कहा है, परंतु परद्रव्य का कर्ता तो कोई भी नहीं हो सकता। शास्त्र में कर्ता कर्म संबंधी जितनी चर्चा की है उतनी भोक्ता भोग्य संबंधी नहीं है। उसका का ये समझ में आती बात? द्रव्य अपने पर्याय का कर्ता है, कर्ता और कर्म संबंधी, कर्म ने उसका कार्य, तो उस संबंधी जो हमारी मिथ्या मान्यता है उसको निकालने के लिए कर्ता कर्म संबंधी बहुत विस्तार से वर्णन आता है। यही सिद्धांत भोक्ता और भोग्य में लगेंगे। अज्ञानी क्या मानता है? मैं भोगता हूँ, ये सारे द्रव्य मेरे भोग्य पदार्थ है, यानी इनको मैं भोग रहा हूँ। ये लड्डू खाया या कुछ, ये पंखे की हवा ली, ये क्या, ये मेरे भोग्य और मैं उसका भोगता हूँ। तो कहते कर्ता कर्म की जितनी चर्चा है उतनी इसकी नहीं है। उसका कारण यही है, जहाँ कर्ता बुद्धि होती है वहाँ भोक्ता बुद्धि भी होती ही है। तो कर्ता कर्म बुद्धि चली जाए तो भोक्ता बुद्धि वो भी समाप्त हो जाते। जब ये सब जगह जीव को अकर्ता 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 जब कहते हैं तो परद्रव्य का अकर्ता है, राग का अकर्ता है, अपने पर्याय का तो कर्ता है, वहाँ अकर्ता नहीं लगाना है। प्रत्येक द्रव्य अपने पर्यायों का कर्ता है, परंतु परद्रव्य की पर्याय का वो अकर्ता है। जब अकर्ता है, क्योंकि कर्ता है ऐसे भी आता है ना, अपने वो श्रीमद जी के 6 पद है उसमें तो आत्मा है वो करता है, कहा करता है किसका करता है? अपने पर्यायों का। और जब शास्त्र में अकर्ता की बात आती है तो पर पदार्थों का अकर्ता है।
शुभ भावों को भी पर कहा है,
पर कहा है, क्योंकि आश्रय तत्व से भिन्नता करनी है ना अपनी। तो जैसे प्रवचन सार में तो जीव ही राग का करता है ऐसा कहेंगे, फिर अभी उससे भी भिन्नता करनी है अपनी तो क्या कहेंगे वहाँ, क्योंकि राग भी जीव की पर्याय है। उस अपेक्षा से ज्ञान की अपेक्षा हम कहेंगे ये जीव का ही परिणमन है, जीव का परिणमन है, फिर भी ये जो उसका ज्ञाता स्वभाव भिन्न है और ये विभाव भाव भिन्न है। फिर समय सार में क्या कहा, ये राग उत्पन्न हो रहे हैं वो परद्रव्य है। परद्रव्य क्यों? क्योंकि उससे अपनी भिन्नता समझने के लिए, क्योंकि उसको अपना 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 मान मान कर मतलब तो अनादि की मान्यता चल ही रही है उसके, इसलिए उसको भिन्न दर्शाने के लिए, भिन्न अनुभव करने के लिए राग मैं हूँ, सॉरी ज्ञान मैं हूँ और ये राग है वो परद्रव्य है, बिल्कुल जुदा द्रव्य ऐसा कहेंगे वहाँ अपेक्षा के लिए। हो तो वो सर्वथा भिन्न है तो फिर दूर करने की जरूरत क्या है? ख्याल में आती अपेक्षा, ये सारा ही अपेक्षावश जो कथन है उसको उसी अपेक्षा में उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। उसको सर्वथा मान लेंगे तो फिर आप राग तो है ही नहीं, यानी यहाँ स्वच्छंद प्रवर्तन करो और राग तो मेरा है ही नहीं है, मैं तो बस शुद्ध बुद्ध हूँ, इसको कहेंगे निश्चयाभासी हो गया। वो स्वभाव की बात है, पर्याय में अभी मलिनता है। देखो जैसे हमारे पास एक कपड़ा है तो कपड़ा मलिन हुआ, तो कपड़ा मलिन हुआ है इसका ज्ञान होगा तभी जाके हम मैल दूर करेंगे, एक बात, यानी वो मलिन हुआ है पहले ये एक्सेप्ट करेंगे। फिर आगे की बात क्या है, ये मलिन जो हुआ है वो कपड़े का ओरिजिनल ही ऐसा अगर कलर है ऐसा अगर मानेंगे तो उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मलिन हुआ है परंतु कपड़ा तो कपड़ा है, स्वच्छ है और मलिनता अलग है, ये श्रद्धा में लेंगे। पहले मलिन है उसका ज्ञान किया, फिर वो मलिनता भिन्न है और कपड़ा भिन्न है उसको श्रद्धा में लिया, तब जाके वो मलिनता दूर करने के लिए जो कुछ हमने प्रोसेस किया वो आगे चल कर करेंगे। ऐसा ही यहाँ करना है। यहाँ हमारे पर्याय में मलिनता है, मिथ्यात्व राग द्वेष है, पहले इसका ज्ञान होना चाहिए। ये मेरी ही अवस्था में हो रहा है और मेरी अशुद्ध उपादान से कहो या मेरे अपराध से हो रहा है, पहले ज्ञान हो गया इसका। अब तो क्या राग मेरा स्वभाव है कायमी? कहते नहीं, ये ऊपरी है, विभाव भाव है। मेरा स्वभाव कैसा है? जैसे सिद्ध भगवान का है। शुद्ध जीव वस्तु कैसी है? जैसे सिद्ध भगवान की है। द्रव्य से भी और पर्याय से भी जो शुद्धता है वैसा मैं, ओरिजिनल मेरा स्वभाव ऐसा है। और अभी तो ये विभाव भाव दिख रहे हैं, यानी श्रद्धा में क्या लेना है? श्रद्धा में हो प्रतीति में ये भिन्न है और मैं भिन्न। फिर आगे का प्रोसेस क्या है? वहाँ तो साबुन लगाया था कपड़े में, अब यहाँ कौन सा साबुन लगाना है? और वहाँ तो कपड़ा भिन्न है और साबुन लगाने वाला कोई तीसरा है कोई, यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमने श्रद्धा में लिया कि मलिन यानी राग वेश भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। अब क्या करना है? जैसे हमारा सिद्ध जैसा जो स्वभाव भाव है उसी में एकाग्र होंगे कि यही मैं हूँ, जो परमात्मा प्रकाश का विषय चल रहा है अभी। उसमें तो इतनी आगे आगे चल, इतनी जिसको भी सरल 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 करके बात बताए। गुरुदेव कांजी स्वामी तो बार बार कह रही है लहलता लाडू पिरसा है, खाओ अभी। अब इतना सॉफ्ट करके सब पीछा, बहुत बढ़िया है ये शास्त्र। यानी ये जो हमने प्रतीति में श्रद्धा में लिया है, अंदर ऐसा देखेंगे नहीं, क्योंकि हम तो केवल ज्ञानी तो है नहीं, आत्मा दिखने वाला नहीं है ध्यान में। क्या कहा? ध्यान अवस्था में आत्मा दिखने वाला नहीं है, आत्मा तो अरूपी है। हमने तो प्रतीति, हमने आगम के द्वारा आत्मा कैसा है उसको जान लिया है, वो श्रद्धा के साथ हम अंतरंग में स्थिर हो जाएंगे कि अपने ज्ञान तो होते हुए अनुभव में आ रहा है। इसको हमने जाना, पद पदार्थों को जाना, सबको जाना, ये जानने की क्रिया यहाँ हो रही है, हमको अनुभव हो रहा है। यानी ये ज्ञानमयपना ये मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव में हम एकत्व स्थापित करेंगे। और ये जो हम जितना अभ्यास करेंगे तो जितने हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी और बिल्कुल स्पष्टता भाषित होगी ये तत्वों की, तो इसे निर्मल बुद्धि के साथ और अपनी महिमा आती है तो स्थिर हो जाता है, अपने ज्ञान को ज्ञान में अनुभवने लगता है, उसके अति आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा ऐसा उसको दिखेगा नहीं अंदर में, हमें अति आनंद की अनुभूति हुई, उसके द्वारा हम कहते हैं यहाँ सम्य दर्शन हुआ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ये तो हो गई बात। यानी जैसे कर्ता बुद्धि नष्ट होती वैसे भोक्ता बुद्धि भी नष्ट होती,
अनुभूति होती, हाँ यही मैं हूँ,
यही मैं हूँ। ये तो उसकी श्रद्धा अड़ी हुई थी, प्रतीति हुई थी, अनुभूति तो ज्ञान की पर्याय हुई।
निर्विकल्प है,
हाँ निर्विकल्प है, निर्विकल्प ने अभेद अखंड आत्मा की अनुभूति हुई, और निर्विकल्प के दोनों ही अर्थ वहाँ फिट होते हैं। निर्विकल्प ने वहाँ राग रहित ऐसी अनुभूति हो रही, ज्ञानमय अनुभूति हो रही, इसलिए निर्विकल्प। यानी भले विकल्प थे उस स्टेज पर तो इसका लक्ष्य छूट गया, और लक्ष्य किसको? अपने को उसने लक्ष्य में ले लिया, तो ये निर्विकल्प। और निर्विकल्प ने अखंड अभेद अखंड आत्मा की अनुभूति हो रही है उसको, तो भी निर्विकल्प कहेंगे। निर्विकल्प शब्द दोनों ही ओर से लागू हो गए। यानी उसमें ये गुण है कि ये पर्याय ऐसा कोई भेद, वो तो पहले की स्टेज में प्राथमिक भूमिका में हमने भेद कर करके उसको जाना था, अब जान लिया ना आत्मा कैसा है, ज्ञान है, दर्शन है, सब कुछ है, तो कहते अभी उन भेदों का लक्ष्य छोड़ दो, अभी अखंड जो ये पूरी एंटिटी में अखंड हूँ ऐसे उसकी वो हम प्रतीति चलेगी। भेद करके जानना तो प्राथमिक भूमिका थी, ये हम जिनागम का इतना अभ्यास कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी जो अब तक की मिथ्या मान्यता थी आत्मा कैसा है उस संबंधी, तो ये हमने सही अभी जाना, अभी तो सही जान लिया है। कहाँ से? आगम से। ये पहली स्टेप है, आगम से हमने मैं कैसा हूँ ये जान लिया, हमारी परिणमन व्यवस्था क्या है वो जान लिया, हमारा कार्य कोई आके दूसरा करने वाला नहीं है ये जान लिया, हमारी एक एक पर्याय सुनिश्चित सो समय पर होगी ये जान लिया। अभी हमने बिल्कुल ठाम ऐसा ठोस निर्णय कर लिया। अभी ऐसा है तो आत्मा में ऐसे अनंत अनंत गुण है, जैसे अभी सिद्धों का वर्णन यहाँ आता है, ऐसा मैं हूँ समझा और ये सारे जान लिया है। अब करना क्या रहा? कुछ नहीं करना रहा, बस अपने अस्तित्व का ग्रहण होना चाहिए। वो होते ही वहाँ तो अतिमय आनंद की अनुभूति हो जाती है। सहज प्रक्रिया ये तो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है अपने को नियमसार में भी बहुत बढ़िया बात है कि जैसे सर्वज्ञता हमारा स्वभाव है वैसे वीतरागता हमारा स्वभाव है। जैसे पानी सहज ढलान की ओर नीचे की ओर बहता है वैसे हमारा सहज स्वभाव है कि हम उपयोग अंतर्मुख करेंगे तो अपने आत्मा को जाने पकड़े। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर की महिमा रही है। उपयोग का ऐसा स्वभाव है कि जहाँ की महिमा आती है वहाँ वो दौड़े बिना नहीं रहता। तो कुछ तो स्थिर रहना चाहिए ना, ये तो बार बार भटकता है भटकता है भटकता है। टीवी के सामने बैठा है और हाथ में रिमोट कंट्रोल है, क्या करता है जी? यहाँ की बात मालूम नहीं, वहाँ की इंडिया की बात करते है कि बार 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 अभी थोड़ा बीच में वो ब्रेक आ जाए तो इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। ऐसा ही इस जीव का उपयोग इधर उधर 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 भटकता है, टिक नहीं पाता क्योंकि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ चलती बस। इसको जानो, उसको जानो, उसको जानो। अब ये सो सारा जानने वाला तो मैं स्वयं हूँ। अब जब इसकी महिमा आएगी तो वहाँ उपयोग टिकेगा, कुछ काल तक टिकेगा तो आत्मा की अनुभूति होगी। ये टिकता ही नहीं ना वहाँ पर। एक तो अपनी महिमा कभी आई नहीं इसको, पूरी दुनिया की महिमा आई है इसको। हीरे की बात आती है, कुछ डॉलर्स की बात आती है, अन्य कोई भी बढ़िया चीज बाहर की इसके लिए, इधर ऐसा है उधर ऐसा है उधर ऐसा है। लोग कहते हैं अमेरिका में एक बार तो जाना चाहिए, क्या स्वर्ग है वहाँ पर, वहाँ देखना चाहिए। अरे इंडिया में हम मिले, हमने बोला हम अभी तो 7-8 बार होके आए, हमें तो कहीं स्वर्ग नहीं दिखा दिया।
वहाँ पर इतनी क्रेज है, एक पंडित का लड़का है वो तो अमेरिका ही जाना है, अमेरिका ही जाना है। तो हमने ऐसे ही प्रवचन में बोला कि हम वहाँ के लोगों को कैसा दुखी देख के आए जनरल, तो बोला हमारे बच्चे को समझाओ, उसको बताओ क्या है क्या है क्या है। लोगों को वहाँ ऐसा लगता है अमेरिका यानी स्वर्ग ही है, खाली वहाँ पगार दिखता है, इतना मिलता है, इतना पैसा मिलता है, खर्चा कितना होता है मतलब
पगार का कन्वर्जन करते हैं इसलिए।
हाँ इसीलिए। चल अभी अपने समय हुआ ना, क्या 9 बजे तक? अच्छा बहुत अच्छा। हाँ अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो कर्ता कारक की हमने चर्चा की है, अब कर्म कारक की बात करेंगे। कर्म यानी पर्याय कार्य, यानी द्रव्य का कार्य द्रव्य में अपने में ही होता है, अपने से ही होता है। हमने देखी थी बातें, यहाँ पढ़ेंगे। बापू जी मिला कि नहीं? ये बोल्ड लेटर में लिखा है ना कर्म कारक, कर्ता कारक के बाद अब कर्म कारक की चर्चा करेंगे। कर्म शब्द से उलझन में पड़ सकते हैं, अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग होता है। जन सामान्य तो उसका अर्थ जाने बिना उसका सरेआम प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि सुना है ना क्या कि हमें कर्म करते रहना चाहिए परंतु उसके फल की अपेक्षा इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये तो सब जगह आपने सुना होगा
कभी कभी प्रदीप का था।
हाँ कि कर्म करो उसकी अपेक्षा मत रखो। घर गृहस्थी धंधा व्यापार नीति और सदाचार से करना, दूसरों को मदद करना, इसी को वे कर्म करना कहते हैं। अपना अपना कर्म करो यानी क्या गया, वो भले भाव से रहो, ये अपना कर्म करो, ये अपना अपना कार्य करो, उसकी बात यहाँ नहीं है। पर पदार्थों का मैं करता हूँ और शरीर आदि की क्रिया मेरा कर्म है, ऐसी मान्यता तो महान मिथ्या तो है। ये जो दुनिया समझते ना अपना अपना कर्म करते रहो, अपना अपने ने अपना किसको माना? मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य का जो योग्य जो व्यवहार है सदाचार है वो करते रहो, बस इतना ही उनका कहना है। तो क्या बस सही है? यहाँ तो मनुष्य पर्याय में मैं जीव हूँ और ये शरीर आदि तो पर द्रव्य है, ऐसा हमें सच्चा ग्रहण होना चाहिए। क्योंकि इसी प्रकार के उपदेश के दोष लोग एक दूसरे को पिलाते रहते हैं और सुनने वालों को भी वे मीठे लगते हैं, है ना। अच्छा अच्छा हम सुनते हैं। आजकल तो टीवी पर सभी चैनल्स इतने आ गए हैं कि हर कोई प्रवचन करने लगा है। हम लोग कहते हैं उसमें से हम अच्छा अच्छा लेते हैं, ये ऐसा इसको अच्छा अच्छा मानते हैं। इसमें कोई सिद्धांत मिलते नहीं मूल, बहू के साथ कैसे बिहेव करना और सासू को कैसा रहना चाहिए और क्या करना, ये बात है। ये तो सदाचार है, ये तो माँ को या अपने बेटों को सिखानी चाहिए। परंतु यहाँ हम मोक्ष जैसी अलौकिक बात करने जा रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति जिन सिद्धांतों को जानने से होगी, उन सिद्धांतों की कोई बात ही नहीं। ऐसे ऊपर ऊपरी कुछ बात करते है वो बहुत अच्छी लगती है। मनुष्यपना का उसकी बुद्धि कायम रखकर सदाचार की बातें बताते और कुछ नहीं बताते। यानी ये तो अनादि से ऐसा ही चलता आ रहा है ना। अभी इसने नया क्या सीखा? इससे उसकी मिथ्या मान्यता तो नहीं होगी। आप कहेंगे तो क्या सदाचार छोड़ दे? अरे ये तो सदाचार है, नैतिकता है, ये तो होनी ही चाहिए। अन्याय अनिति अभक्ष भक्षण छोड़े बिना तो ये मार्ग सुनकर भी समझ में नहीं आएगा। ये तो ऐसा ही सहज वस्तु स्वरूप है। शास्त्र में कर्म का, ये तो लौकिक में कर्म शब्द जो आता है उसकी बात की, अभी शास्त्र में भी कर्म शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। एक है द्रव्य कर्म। आपने कोई कर्म सुने हैं? कौन से?
तीन कर्म।
हाँ, तीन कर्म कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अब यहाँ उसके अर्थ लिखे। द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावरणादि आठ कर्म जो पुद्गल के कारमाण वर्गना की अवस्था है। ये जो कर्म है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह, उसका रॉ मटेरियल क्या है? तो कारमाण वर्गना। कारमाण वर्गना तो पूरी पूरे लोकाकाश में स्प्रेड है, पूरे ठसोठस भरी है। जहाँ हम जीव के प्रदेश है वहाँ पर भी कारमाण वर्गना ठसोठस भरी है। जीव मोह राग द्वेष करता है तो पर्टिकुलर कारमाण वर्गना उस कर्म रूप से परिणमित होती है। कारमाण वर्गना में बहुत वेरिएशन है। वो ज्ञानावरण रूप परिणमित होने वाली अलग है क्योंकि परिणाम एक, और कुछ कारमाण वर्गना ज्ञानावरण रूप हो गए, कोई कारमाण वर्गना मिथ्या तो कर्म रूप हो गई, और कोई नाम कर्म रूप हो गई, और कोई आयु कर्म रूप हो गई। इतना वेरिएशन क्यों? परिणाम तो एक हुआ एक समय में, और एक समय में आठों कर्म बंधे। इसका अर्थ ये जो कारमाण वर्गना है अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने कर्म रूप परिणमित हो गए। ध्यान में आते ना, अगर जीव के एक परिणाम से कारमाण वर्गना कर्म रूप होती है तो एक ही टाइप का कर्म होना चाहिए, उसमें इतनी विविधता क्यों? अब उसके पीछे बहुत बड़ी कर्म थियरी है। तो ये सामान्य रूप से इतना आप समझ लो। दूसरा कौन सा है? भाव कर्म। जीव के राग द्वेष और मोह आदि परिणाम, इसको कहेंगे भाव कर्म। और तीसरा है नो कर्म, शरीर मन वाणी आदि। आदि में कभी उच्छ्वास को भी लिया है या तेजस को भी लिया है। चौथा भी एक प्रयोग होता है कर्म शब्द का, तो कर्म यानी कार्य यानी पर्याय। तो अभी हमने देखा कर्ता कर्म संबंध, यहाँ भी कर्म कारक जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? कार्य। कार्य किसको कहते हैं? द्रव्य की जो पर्याय है वही उसका कार्य है। कर्म कारक की चर्चा में यह चौथे प्रकार का अर्थ समझना चाहिए। कौन सा अर्थ? कर्म का अर्थ क्या यहाँ लेना है? पर्याय, कार्य। पहले हम इतना ही कहते हैं थे कि द्रव्य कर्ता यानी त्रिकाली उपादान है और पर्याय उसका कर्म है। क्या देखते थे? द्रव्य कर्ता है और पर्याय उसका कर्म है। इतना तो हम पहले, जब हम उपादान के भेद नहीं करेंगे तब तक तो ऐसा ही कहेंगे, द्रव्य कर्ता है और पर्याय उसका कर्म है। अब उपादान के भेद प्रभेद जानने के बाद, ये याद है भेद कौन से हैं?
उपादान के,
हाँ उपादान
के तीन भेद, त्रिकाली,
हाँ त्रिकाली उपादान,
एक पुद्गल की पर्याय,
हाँ अनंतर पूर्व यानी इमीडिएट प्रायर, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय,
हाँ
और तत्समय की योग्यता रूप। यानी एक है त्रिकाली और एक है क्षणिक। क्षणिक के दो भेद किए, पूर्व पर्याय का व्यय और इस समय के पर्याय का उसकी योग्यता, उससे वो पर्याय उत्पन्न हुए। तो तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण कर्ता है और वह पर्याय कर्म है। क्या कहा? पर्याय की योग्यता ये कर्ता और पर्याय इटसेल्फ कर्म। क्या कहा मुकुंद भाई?
पर्याय की योग्यता।
हाँ, योग्यता द्रव्य में पड़ी है
और
हमने देखी ना। हाँ, बहुत अच्छा। हमने देखा है विशिष्ट समय में विशिष्ट पर्याय रूप परिणाम ने की योग्यता उस द्रव्य में पड़ी है। कब पड़ी है? अनादि से पड़ी है। हमारा केवल ज्ञान किस समय प्राप्त होगा, प्रकट होगा, उस पर्याय की योग्यता हमारे द्रव्य में अभी वर्तमान में पड़ी है। वो द्रव्य उस समय में केवल ज्ञान रूप परिणमित होगा, नहीं होगा तो हम मनुष्य पर्याय में नहीं आगे तो अरे ऐसा होगी ही नहीं। हो सकता है कोई अभी जीव निगोद में पड़ा है और 10 वर्ष के बाद उसको केवल ज्ञान होने वाला है, 10 वर्ष के बाद, तो वहाँ वो मनुष्य आयु बांधेगा, मनुष्य गति बांधेगा, वज्रेश्वर नारा सहनन बांधेगा, सब बांध के यहाँ मनुष्य में आएगा, 10 साल में केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। इसमें अगर मगर की कोई बात ही नहीं है। कितने कितने ऐसे देखे अभी हम धवला जयधवला महाधवला आदि पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें पढ़ते कि कहाँ कौन सी पर्याय में जीव पड़े हैं और वो कहाँ से निकल कर मनुष्य होकर मोक्ष भी चला जाएगा। हम तो यहाँ स्वाध्याय करते बैठेंगे कि कीड़े मकोड़े देखते हैं ना हमें, चींटी वगैरह, हो सकता है वो अपने पहले मोक्ष पहुँच जाए। हर एक का अपना पर्याय का क्रम सुनिश्चित है। कितने ही पहले सम्य दृष्टि हुए थे, मुनि हुए थे, भावलिंगी हुए थे, बिगड़ गए परिणाम, छूट गया मिथ्यात्व में चले गए और ऐसे पर्याय में पड़े हैं अभी। सातवें क्या ग्यारहवें में तो जाके आए थे, एक बार नहीं चार बार। कोई जीव एक ही भव में दो बार उष्ण श्रेणी करके उतर सकता है और उसके पूरे ही जो कुछ उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल है इसमें अधिक से अधिक चार बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे हुए जीव भी कितने ही अभी निगोद में पड़े हैं वर्तमान में, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन का तो अनंत काल है। हो सकता है कभी वो भावलिंगी मुनि हुए थे, हो सकता है कभी वो समय दृष्टि हुए थे, पांचवें गुण स्थान वर्ती हुए थे, भटक गए ऐसे। तो हमें तो क्या, समय दृष्टि हुए तो अभी हमें मिल गया सब ऐसा फूल, कोई ऐसा यानी अभिमान की बात नहीं उसके अंदर।
बहुत शांति के रहती है।
बिल्कुल समझ आते हैं। ये पढ़ते तो और ऐसा लगता है कैसा वस्तु का स्वरूप है। अब ऐसे पर्याय में पड़े हैं कि जहाँ जीव है मानने के लिए कोई तैयार नहीं। आलू में जीव है, प्याज में या लहसुन में है, किसने देखा ऐसा प्रश्न पूछते हैं। और वो जीव अपने से पहले मुक्त चले जाए ऐसी बात है। इसीलिए हम छोटे छोटे जीवों को भी देखकर ऐसा विचार आता है ना, अरे ये इस पर्याय में है अभी, हो सकता है पहले कभी समय दृष्टि रहे हो सकता है कि अपने भले रहे या नहीं भी रहे हो सकता है कभी ये संगी पंचेंद्रिय हो जाएंगे, समय दर्शन प्राप्त करेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। तभी ख्याल आता ना कि ये भी हमारे जैसे ज्ञान में वो साधर्मी, हमारे वो साधर्मी, केवल जैन ही हमारे साधर में नहीं है, जिनमें चेतना लक्षण है वो सारे हमारे साधर में, उनमें भी चेतना धर्म है, हमारे में भी चेतना धर्म है। जब इतनी बात अपने ख्याल में आती है तो किसी की हिंसा करने के परिणाम नहीं, उल्टा तो ऐसा चौकन्ना रहेंगे, अरे अपने हाथ से तो कोई हिंसा तो नहीं होती ना, इन जीवों को कोई दुख तो नहीं पहुँचता है ना, हमारे जैसे वे भी है। हाँ, हम अभी मनुष्य पर्याय में है, अभी अन्य कोई पर्याय उनकी चल रही है। देखो यहाँ कर्म की बात अपनी हो रही थी क्या। इसी प्रकार छहों कारक उस विशिष्ट पर्याय पर घटित होते हैं। देखो पहले हमने छह कारक द्रव्य पर घटाए थे, हमने देखा ना द्रव्य ही अपने पर्याय का करता है, द्रव्य ही उसका साधन है, द्रव्य ही संप्रदान है। पेज नंबर 104 चल रहा है मेरा हिंदी में। अब यहाँ पर्याय पर घटित करेंगे, छह कारक पर्याय पर घटित करते, पर्याय स्वयं ही करता। देखो पहले द्रव्य और पर्याय को मिलकर अभेद बनाकर कथन किया था, अब यहाँ पर्याय को द्रव्य से भी भिन्न, एक समय के पर्याय को अलग लेकर हम सोच रहे हैं कि पर्याय अपना स्वयं का करता है, क्योंकि वो उसी समय अपने स्वयं की योग्यता से उत्पन्न हुई है। तो पर्याय स्वयं ही करता पर्याय स्वयं ही कर्म, पर्याय स्वयं ही करण, यानी उसका साधन क्या है वही पर्याय, पर्याय स्वयं ही संप्रदान। ये वो पर्याय क्यों, कहाँ, किसके लिए हुई, अपने ही लिए हुई। पर्याय स्वयं ही अपादान, किसमें से हुई, अपने में से ही हुई है। पर्याय स्वयं ही अधिकरण है, उसका आधार क्या है, द्रव्य है ना, लेकिन ये पर्याय स्वयं ही अपना आधार है। वो स्वयं अपने षटकारक से विशिष्ट समय पर उत्पन्न हुई है, इतनी स्वतंत्रता ख्याल में आती है। अकेले द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं, उसके एक एक पर्याय की स्वतंत्रता। अभी उसको अपने स्थान से कौन डिगा पाएगा बोलो, ना अपनी पर्याय कोई चेंज कर सकता है अपने स्थान पर, ना पर की। तो किसी न किसी पर्याय के करने की चिंता के बोझ चले हम तो दबे जा रहे हैं। टेंशन 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 चलता है ना, क्या क्या करना है हमको, क्या पूरी दुनिया को ठीक ठाक करना है ना। सब ठीक ठाक है, उसको एक्सेप्ट करना है, परंतु वो किया नहीं जा रहा है। इसे आत्मा पर घटाते हैं। द्रव्य और पर्याय अभेद करके छह कारक इस प्रकार है। आत्मा स्वयं ही, अभी अपने पर लगाना है, आत्मा पर लगा है। आत्मा स्वयं ही अपने निर्मल शुद्ध पर्याय का कर्ता है। अब ये राग का कर्ता वाली बात निकाल दी यहाँ से, शुद्ध निर्मल पर्याय दी। शुद्ध पर्याय उसका कर्म है, आत्मा ही उसका साधन अर्थात करण है। स्वयं को ही शुद्धता का दान देता है, इसलिए आत्मा संप्रदान है। ये पर को दान देने की बात नहीं है, ख्याल में, वो दान लाभ गुण की कल बात उठाई थी ना उसने, ये पर को दान देने की बात नहीं, अपने को ही शुद्धता का दान देता है। स्वयं में से देता है, इसलिए आत्मा अपादान है, और स्वयं के आधार से देता है, इसलिए आत्मा ही अधिकरण है। अब एक मिनट में उसके पर्याय के छह कारक देख लेते हैं। आत्मा के शुद्ध पर्याय के छह कारक इस प्रकार है। शुद्ध पर्याय स्वयं करता, शुद्ध पर्याय स्वयं कर्म, शुद्धता ही उसका साधन है, इसलिए शुद्ध पर्याय करण। अपने को ही शुद्धता का दान देने से शुद्ध पर्याय संप्रदान, स्वयं में से शुद्धता प्रकट होने से शुद्ध पर्याय अपादान, और स्वयं के आधार से शुद्ध होने से शुद्ध पर्याय अधिकरण है। ये सारी बातें समझने पर इसका फायदा क्या है, कहते दृष्टि पर पदार्थों और पर्यायों से हटकर। हमारी अभी तक बारंबार उपयोग और दृष्टि कहाँ चलती, पर की ओर और पर्यायों पर, अपने या पर के, स्व तरफ केंद्रित हो जाती है, यानी जो शाश्वत रहने वाला मैं स्वयं हूँ उस पर केंद्रित होती है। और ज्ञानानंद स्वभाव को जानते रहने से, क्या कहा, जिसको जानते वैसा उसका चलता है, ज्ञान करते। अभी अपना स्वभाव ही ज्ञान और आनंदमय है, उस स्वभाव को ही हम फोकस करेंगे, उस पर जानते रहेंगे, तो पर्याय में भी ज्ञान और आनंद प्रकट होता है। पर्याय में वितरागता और आनंद की प्राप्ति होती है। अब यहीं रुकेंगे हम, बोलो 2400 भगवान।